ये आकाशवाणी है। अब आप फरहतना से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में राष्ट्रव्यापी उत्सव वीर बाल दिवस में भाग लेंगे। देश के भावी निर्माता के रूप में बच्चों को सम्मानित करने के लिए इसका आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर वे उपस्थित जन समुदाय को संबोधित भी करेंगे। वर्ष 2022 में श्री मोदी ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। ये दिन गुरु गोविंद सिंह के 4 साहिबजादों के साहस और बलिदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। इस अवसर पर श्री मोदी सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का शुभारंभ भी करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य पोषण संबंधी सेवाओं के कार्यान्वयन को मजबूत कर इनके परिणामों में सुधार करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब से कुछ देर में 7 वर्गों में असाधारण उपलब्धियों के लिए 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान करेंगी। पुरस्कार प्राप्त करने वाले बच्चे 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। सरकार कला और संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, खेल और पर्यावरण के क्षेत्र में बच्चों की उपलब्धियों के लिए बाल पुरस्कार प्रदान करेंगी। पुरस्कृत होने वाले बच्चों को पदक, प्रमाण पत्र और संदर्भ पुस्तिका प्रदान की जाएगी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के नेताओं की कल एक बैठक केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के नई दिल्ली स्थित आवास पर हुई। इस बैठक का उद्देश्य गठबंधन के सहयोगियों के बीच समन्वय सुदृढ़ करना था। इस बैठक में तेलुगु देशम पार्टी अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जनता दल यूनाइटेड के नेता और पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह, जनता दल सेक्युलर नेता और भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी सहित गठबंधन के कई अन्य नेता शामिल हुए। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के सदस्यों की संख्या में इस वर्ष अक्टूबर के दौरान 13,41,000 की वृद्धि हुई है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने ये जानकारी देते हुए कहा कि सदस्यों में वृद्धि का श्रेय रोजगार के बढ़ते अवसरों, कर्मचारी लाभों के बारे में बढ़ती जागरूकता और ईपीएफओ की प्रभावी आउटरीच पहल को दिया जा सकता है। पेरोल डेटा से पता चलता है कि मौजूदा वित्त वर्ष के अक्टूबर महीने में लगभग 7,50,000 नए सदस्य ईपीएफओ में शामिल हुए। नए सम्मिलित सदस्यों में 18 से 25 आयु वर्ग के युवा सबसे अधिक हैं। बिहार कैडेट के 1992 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अरुणीश चावला वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव नियुक्त किए गए हैं। श्री चावला वर्तमान में रसायन और उर्वरक मंत्रालय में सचिव फार्मास्यूटिकल्स के पद पर कार्यरत हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमित अग्रवाल नए फार्मास्यूटिकल सचिव नियुक्त किए गए हैं। मणिपुर के मुख्य सचिव विनीत जोशी उच्च शिक्षा सचिव नियुक्त किए गए हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की विशेष सचिव निर्जा शेखर राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की महानिदेशक होंगी। वस्त्र मंत्रालय में सचिव रचना शाह, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की सचिव नियुक्त की गई हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की सचिव नीलम शम्मी राव वस्त्र मंत्रालय की नई सचिव होंगी। संजय सेठी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सचिव नियुक्त किए गए हैं। राष्ट्रीय आयुष मिशन ने परंपरागत अभ्यासों पर आधारित सुगम और कम खर्चीली स्वास्थ्य सेवा से लोगों को सशक्त बनाया है। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने राष्ट्रीय राजधानी में सभी के लिए आयुष राष्ट्रीय आयुष मिशन के जरिए समग्र स्वास्थ्य सेवा शीर्षक की फिल्म श्रृंखला का अनावरण करते हुए ये बात कही। ये श्रृंखला राष्ट्रीय आयुष मिशन की उल्लेखनीय प्रगति और परिवर्तनकारी असर को दर्शाती है। राष्ट्रीय आयुष मिशन का उद्देश्य आयुष्मान आरोग्य मंदिर के जरिए आयुष स्वास्थ्य सेवा को सशक्त बनाना और निरोधक देखभाल को बढ़ावा देना है तथा मुख्यधारा की स्वास्थ्य सेवा में आयुष व्यवस्था को एकीकृत करना है। केरल सरकार ने कल रात कोझिकोड में प्रख्यात मलयालम लेखक एमटी वासुदेवन नायर के हुए निधन के बाद आज और कल राजकीय शोक की घोषणा की है। आज होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक और अन्य सरकारी समारोह स्थगित कर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है और मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री वासुदेवन का अंतिम संस्कार आज शाम कोझिकोड के मवूर रोड शमशान में किया जाएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का चौथा क्रिकेट टेस्ट मैच जारी है। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में टी ब्रेक तक 2 विकेट पर 176 रन बना लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में अभी दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर हैं। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कुछ हिस्सों में आज भी शीतलहर जारी होने का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, मेघालय और राजस्थान में भी अगले 2 से 3 दिनों के दौरान कोहरा छाए रहने की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।